नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर चर्चा करने वाले हैं।
जी,
शीर्षक है युग शोधन हेतु मनीषा को आमंत्रण, और ये हम जैसे औसत भारतीय नागरिकों के लिए ही है।
बिल्कुल बिल्कुल,
इसका मकसद है कि हम समझें कि ये मानव जीवन इतना खास क्यों है, और इसमें भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी समाज को बदलने में, युग को बदलने में क्या भूमिका हो सकती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं।
जरूर पूज्य गुरुदेव, शुरुआत यहीं से करते हैं कि देखे, मनुष्य को ना बाकी प्राणियों से कुछ अलग, कुछ विशिष्ट अनुदान मिले हैं।
हाँ,
जो उसे बिल्कुल खास बनाते हैं। जहाँ दूसरे प्राणी हैं वो बस पेट भरने और वंश बढ़ाने में लगे रहते हैं,
चेतना मिली है, हाथ, आंखें, ये मस्तिष्क, सब कितना अनोखा है। ये सच में प्रकृति की एक बहुत विशेष रचना है जो हमें आम जिंदगी से ऊपर उठाती है। पर गुरुदेव सिर्फ शरीर की बात तो नहीं कर रहे हैं ना?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इससे भी आगे जाते हैं। वो कहते हैं कुछ खास दैवी अनुदान भी हैं, जो मतलब हर किसी को नहीं मिलते, योग्यता देखकर पात्रता अनुसार मिलते हैं।
अच्छा,
पूज्य गुरुदेव ऐसे चार मुख्य अनुदान बताते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो हमारी पुरानी वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसके मूल विचार, मतलब गुण और कर्म पर आधारित जो भूमिकाएं थी,
हाँ,
उसकी तरफ इशारा करते हैं।
तो ये चार अनुदान कौन कौन से हैं?
ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा।
देखिए, पहला और सबसे अहम अनुदान वो बताते हैं, रित।
रित, हाँ, रित। इसका मतलब है सत्य, गहरी समझ, प्रज्ञा या अंदर से उठने वाली सही प्रेरणा, अंत प्रेरणा। ये मुख्य रूप से ब्राह्मण यानी जो बौद्धिक काम करते हैं, सोचते विचारते हैं, समाज को दिशा दिखाते हैं, उनको मिलता है। वेद में भी आता है ना, रितम च सत्यम चाभिदा तपसोध जायता, मतलब रित और सत्य ये गहरे तप से ही जागते हैं। दूसरा अनुदान है शौर्य या साहस, हिम्मत, पराक्रम।
अच्छा,
ये क्षत्रिय वर्ग का गुण माना गया है, जो समाज की रक्षा करते हैं, व्यवस्था देखते हैं, और इसी साहस के बल पर तो कोलंबस जैसे लोगों ने दुनिया खोजी, या फिर मीरा और विवेकानंद जैसे लोगों ने अध्यात्म के क्षेत्र में असाधारण काम किए।
और बाकी दो अनुदान कौन से हुए?
तीसरा है साधन, मतलब संपदा, संसाधन जुटाने और उसको संभालने की क्षमता। ये वैश्य वर्ग से जुड़ा हुआ है।
ठीक है।
और चौथा है श्रम, यानी शारीरिक मेहनत, परिश्रम करने की लगन, निष्ठा। ये श्रमिक वर्ग का आधार है। आप सोचिए, इन्हीं लोगों ने तो अपनी मेहनत से इस धरती को रहने लायक बनाया, ऊबड़ खाबड़ जमीन को ठीक किया, जंगली जानवरों को पाला, अन्न उगाया, घर बनाए, कपड़े बनाए।
हाँ, ये तो है। इन चारों में आपने बताया कि रित को बुद्धि का सबसे ऊंचा, सबसे परिष्कृत रूप कहा गया है।
जी,
गुरुदेव मानते हैं कि इसी रित के जागने से जीवन सफल होता है, विद्या सार्थक होती है। पर वो इस बात पर चिंता भी करते हैं कि आजकल अकल का, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है।
हाँ, ये बहुत बड़ी चिंता है उनकी। वो देखते हैं कि आजकल बुद्धि का प्रयोग ज्यादातर बस अपना पेट भरने या दूसरों को धोखा देने, चालाकी से अपना काम निकालने, मतलब ऐसे जाल बुनने में हो रहा है। और यही पर वो एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का।
हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में।
जी, वो शिक्षक थे, उन्हें जो तनख्वाह मिलती थी उसमें से बस अपने गुजारे लायक शायद 50 रुपए रखकर बाकी सब सारा पैसा समाज सेवा में लगा देते थे, खासकर नारी शिक्षा और विधवा विवाह जैसे कामों में।
कमाल है।
यही है रित का असर, जब बुद्धि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के भले के लिए काम करती है। ये वो जिम्मेदारी है जिसका जिक्र वेदों में भी है, वयम राष्ट्रे जाग्रयम पुरोहिता, मतलब हम पुरोहित यानी समाज के बुद्धिजीवी प्रहरी इस राष्ट्र को जगाए रखेंगे, जीवित रखेंगे।
और अगर मान लीजिए यही बुद्धिजीवी वर्ग, यही प्रहरी अपने रास्ते से भटक जाए तो फिर क्या होता है?
तब तो समाज के लिए बहुत ही बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। गुरुदेव बड़े मार्मिक शब्दों में कहते हैं कि जब कोई आम आदमी गुनाह करता है तो वो चोर डाकू बनता है।
हाँ,
पर जब ज्ञान और बुद्धि वाला ब्राह्मण गलत रास्ते पर जाता है तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है।
बाप रे, ब्रह्म राक्षस।
हाँ, जो समाज के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी होता है। इसीलिए आज के समय की, युग की सबसे बड़ी पुकार यही है कि बुद्धिजीवी वर्ग जागे।
और ये जागरण किसी परिवार या वंश परंपरा से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये विचारों की, चेतना की परंपरा है। सही कहा ना?
हाँ, बिल्कुल। गुरुदेव साफ कहते हैं कि ये ब्राह्मण होना या बुद्धिजीवी होना जन्म से नहीं आता, ये कर्म से, विचारों से आता है। अगर आप सोचने समझने वाले इंसान हैं तो आप में कहीं ना कहीं रित का अंश है। और उनका आह्वान है कि आज के बुद्धिजीवियों को ये सतही बातों से ऊपर उठना होगा, उन्हें विज्ञान का विज्ञान और धर्मों का धर्म खोजना होगा, मतलब सृष्टि और जीवन के जो मूल सत्य हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझना होगा।
अच्छा, विज्ञान का विज्ञान और धर्मों का धर्म,
ये गहरा है
जी। इसी गहरे ज्ञान से बुद्धि का जो भटकाव है, जो भ्रम है, उसे काटा जा सकता है।
इसी सिलसिले में गुरुदेव आजकल जो ऊपर ऊपर का योग चलता है या सिर्फ नाम के लिए रिसर्च होती है, उसकी आलोचना भी करते हैं ना। हाँ, करते हैं। वो कहते हैं कि भाई, योग सिर्फ कुछ आसन या सांस की क्रिया नहीं है, और शोध सिर्फ डिग्री लेने या नाम कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो एकदम गंभीर, पूरी तरह समर्पित होकर कोशिश करने की जरूरत है।
तो इसके लिए क्या करना होगा?
इसके लिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, टाइम देना पड़ेगा, समय लगाना होगा। और जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना।
हाँ, देवताओं और असुरों ने किया था
जी, वैसा ही गहरा वैचारिक मंथन करना होगा, जैसे देवताओं यानी अच्छे विचारों, श्रद्धा ने, और असुरों यानी शक्तियों, साधनों ने मिलकर अमृत निकालने के लिए सागर को मथा था, वैसे ही आज बुद्धिजीवियों को अपने विचारों के सागर में गहरे उतरना होगा, वहां से सत्य के मोती निकालने होंगे।
ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
बिल्कुल, ये एक महती जिम्मेदारी है। गुरुदेव कहते हैं कि बुद्धिजीवियों पर समाज का, ईश्वर का, पूरी मानवता का कर्ज है, ऋण है, और उसे चुकाना ही होगा।
तो कुल मिला के पूज्य गुरुदेव का आवाहन एकदम साफ है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपनी अकल का और खासकर उस दिव्य अनुदान रित की शक्ति का सही इस्तेमाल करे
जी।
इसके लिए जरूरी समय दे, समर्पण दे, और ये जो युग परिवर्तन है जिसे वो युग शोधन कह रहे हैं, इस महान काम में अपनी पूरी निष्ठा से भागीदारी करे। अपने ज्ञान को, अपनी समझ को सिर्फ अपने तक न रखें, बल्कि समाज के भले के लिए उसे बहाएं।
ये बात सचमुच हम सबके लिए सोचने वाली है कि आज हमारे पास जो भी बुद्धि है, शिक्षा है, जो साधन है, उन्हें हम अपने छोटे मोटे स्वार्थों से ऊपर उठाकर कैसे समाज के भले के लिए, सामूहिक उत्थान के लिए सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सवाल आज के समय में बहुत अहम है, विचार करने लायक है। ओम शांति।